अध्याय छः का शेष पृष्ठ संख्या 81। हेडिंग है फ्रांसिस बेकन सन 1561 से 1626। शेक्सपियर के समसामयिक फ्रांसिस बेकन इंग्लैंड में आधुनिक युग के प्रथम महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं। उनके पिता सर निकोलस बेकन साम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम के लॉर्ड कीपर ऑफ द सील थे। माता लेडी एन ग्रीक और लैटिन साहित्य की विदुषी थीं। चाचा सर विलियम सेसिल प्रधानमंत्री थे। अर्ल ऑफ एसेक्स उनके मित्र थे। इतने संपन्न शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार में उत्पन्न होने पर भी बेकन को जीवन में आर्थिक चिंताएं बहुत सताती रहीं, क्योंकि उनके पिता अपने इस छठे पुत्र के लिए विशेष संपत्ति न छोड़ सके। बेकन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक थे। शिक्षा के बाद सर पर चढ़े कर्ज को उतारने के लिए उन्होंने वकालत शुरू की। बेकन को पिता से राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद प्राप्ति की महत्वाकांक्षा और माता से ज्ञान का उत्कट प्रेम उत्तराधिकार में मिले थे और बेकन ने यथाशक्ति दोनों का ही निर्वाह किया। अर्ल एसेक्स की कृपा से बेकन को समय समय पर आर्थिक सहायता मिलती रही, जिसके कारण वे कर्जदारों की खींचातानी से मुक्ति पाते रहे। अपनी विद्वता और योग्यता एवं अपने संबंधियों तथा मित्रों की कृपा से वे पार्लियामेंट के सदस्य, अटर्नी जनरल, लॉर्ड कीपर ऑफ द सील, लॉर्ड चांसलर, वेरन और वाइकाउंट के पदों तक पहुँचे। किंतु बेकन का चरित्र ऊंचा नहीं था, नैतिक बल की उनमें कमी थी, धन के वे दास थे। स्वार्थ पूर्ति उनका एकमात्र उद्देश्य था। पदलोलुपता उनकी विशेषता थी। जब सम्राज्ञी एलिजाबेथ अपने परम कृपा पात्र अर्ल ऑफ एसेक्स से रुष्ट हो गई तो उन्होंने बेकन को अर्ल एसेक्स के विरुद्ध लगाए गए राजद्रोह के अभियोग का समर्थन करने का आदेश दिया। पृष्ठ संख्या 82। और हितैषी अर्ल एसेक्स के विरुद्ध राजद्रोह और षड्यंत्र के अभियोग का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने धन के लिए एक संपन्न महिला से विवाह किया। लॉर्ड चांसलर के पद पे वे खूब घूस लेते रहे। उन पर मुकदमा चला और अपराध स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि उन भेंटों से उनके न्याय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें भारी जुर्माना और कैद की सजा हुई, किंतु सम्राट जेम्स प्रथम ने जुर्माना माफ कर दिया और कैद सिर्फ 4 ही दिन के लिए हुई। तत्पश्चात बेकन राजनीतिक क्षेत्र से निवृत्त होकर एकांत में अपने वैज्ञानिक प्रयोग करने लगे। एक बार सीट पर प्रयोग करते समय एक मुर्गी को मारकर उसमें बर्फ भरने के लिए बर्फ लेने आप बाहर पधारे, वहीं आपको सर्दी लगकर न्यूमोनिया हो गया और आप अपने प्रयोग की सफलता की प्रसन्नता साथ लेकर इस संसार को छोड़कर चल बसे। फ्रांसिस बेकन महान विद्वान, उत्कृष्ट साहित्यिक, कुशल राजनीतिज्ञ, अत्यंत चतुर, धीर, सहिष्णु और इंद्रिय अनुभववादी तथा प्रयोग विज्ञान प्रेमी दार्शनिक थे। उनका निबंध संग्रह या एसेज अंग्रेजी साहित्य की निधि है। ज्ञान का विकास या एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और नूतन तर्क पद्धति नोवम ऑर्गेनम उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक पुस्तकें हैं। कुछ विद्वान तो बेकन को आधुनिक युग का जनक मानने लगे थे, किंतु भारी बहुमत से यह श्रेय डेकार्त को ही मिलता है। बेकन को इंद्रिय अनुभव और प्रयोग विज्ञान की दुंदुभी बजाने वाला माना जाता है। तर्क की आगमन प्रणाली का शंखनाद उन्होंने किया। वे अपने शिक्षा काल में ही एरिस्टॉटल की निगमन प्रणाली के शत्रु बन गए थे और उन्होंने दर्शन को एरिस्टॉटल के कुप्रभाव से बचाने का संकल्प कर लिया था। निगमन तर्क केवल शब्द जाल है, उसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं। विज्ञान के युग में यह तर्क पद्धति सर्वथा व्यर्थ और अनुपयुक्त है। आधुनिक युग की सभी विशेषताएं धर्म प्रभुत्व के प्रति विद्रोह, दर्शन को धर्म की दासता से मुक्त करना, व्यक्तिवाद, विचार स्वातंत्र, भौतिक विज्ञान का प्रभुत्व, प्रयोगों का महत्व और आगमनात्मक प्रणाली आदि बेकन में प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। बेकन के अनुसार दर्शन से लोगों ने जो आशा लगाई थी वह पूरी नहीं हुई, क्योंकि अब तक दर्शन असहिष्णुता, अंधविश्वास, पारस्परिक विवाद और शब्द जाल में ही फंसा रहा। पृष्ठ संख्या 83। सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि दर्शन और धर्म के क्षेत्र स्वतंत्र और भिन्न हैं। दर्शन का आधार है इंद्रिय विज्ञान और आगमनात्मक तर्क। धर्म का आधार है अतींद्रिय विज्ञान और श्रद्धा। दर्शन का लक्ष्य है मानव समाज का कल्याण। इसका साधन है भौतिक विज्ञान के आविष्कारों द्वारा प्रकृति पर विजय। इसकी पद्धति है इंद्रिय प्रत्यक्ष और आगमनात्मक तर्क तथा वैज्ञानिक प्रयोगों की। दर्शन व्यवहारिक है, यह जीवन के लिए है। सामाजिक जीवन की उन्नति और विकास के लिए दर्शन धर्म का वाहन बनकर नहीं रह सकता। दर्शन ज्ञान है और ज्ञान शक्ति है। इस शक्ति से प्रकृति पर विजय प्राप्त करके वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा जीवन को सुखी बनाया जाता है। प्रकृति पर विजय प्रकृति की आज्ञा में चलने से होती है। प्रकृति की प्रत्येक घटना में कोई न कोई नियम अंतर्निहित होता है। घटनाओं का इंद्रियों और यंत्राद की सहायता से पर्यवेक्षण करना और आगमन प्रणाली द्वारा मूल नियम को जानना तथा उसके आधार पर वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा मानव जीवन को सुखी बनाना दर्शन का कार्य है। यही सत्य की खोज है और यही उसका उपयोग है। जो दर्शन इंद्रिय अनुभव और आगमनात्मक तर्क पर प्रतिष्ठित नहीं है, उसे दर्शन ही नहीं कहा जा सकता। अब तक दर्शन इंद्रिय अनुभव को धुंधला और भ्रामक ज्ञान मानता था और अतिंद्रिय परमार्थ को पूर्ण ज्ञान, किंतु बेकन ने अतिंद्रिय परमार्थ को असत्य और काल्पनिक कहकर ठुकरा दिया और इंद्रिय अनुभव में ही सत्य की प्रतिष्ठा स्वीकार की। जो इंद्रिय अनुभूत नहीं वह यथार्थ नहीं, जो इंद्रिय गोचर नहीं वह सत्य नहीं, जो प्रत्यक्ष नहीं वह तत्व नहीं। अब तक दर्शन धर्म का दास था, बेकन ने उसे भौतिक विज्ञान का दास बना दिया। अब तक दर्शन परमार्थ से बंधा था, बेकन ने परमार्थ को ठुकरा कर दर्शन को व्यवहार की श्रृंखला में जकड़ दिया। अब तक दर्शन का लक्ष्य था ईश्वर ज्ञान और आनंद का अनुभव, बेकन ने दर्शन का लक्ष्य बनाया इंद्रियों के ज्ञान और आनंद का अनुभव। अब तक लोक कल्याण का अर्थ था आध्यात्मिक जीवन और साधन तथा त्याग, बेकन के अनुसार लोक कल्याण का अर्थ हुआ आदि भौतिक जीवन की सुख सुविधा का संग्रह और साधन हुआ वैज्ञानिक आविष्कारों का विकास। बेकन के अनुसार दर्शन का लक्ष्य है प्रत्यक्ष और आगमन के द्वारा प्रकृति का पर्यवेक्षण करके मूल नियमों की खोज, किंतु या तो हम प्रकृति का निरीक्षण करते ही नहीं और यदि करते भी हैं तो ठीक तरह नहीं। ज्ञान की खोज में हम अपने साथ अपने अंधविश्वास, पक्षपात और इच्छाएं भी ले चलते हैं। पृष्ठ संख्या 84। परिणाम यह होता है कि प्रकृति के गुणों का निरीक्षण करते समय हम अपने विश्वास उन पर लाद देते हैं। अतः दार्शनिक का प्रथम कर्तव्य है अंधविश्वास से मुक्ति। बेकन ने ये अंधविश्वास या आइडोला अपनी आलंकारिक भाषा में चार प्रकार के बताए हैं। प्रथम है जाति अंधविश्वास या आइडोला ट्राइबस, जो मानव मात्र में सहज संस्कारों के रूप में विद्यमान रहते हैं। इनके कारण वस्तु स्थिति पर पक्षपात का पर्दा पड़ जाता है। सत्य की खोज से पहले ही हम सत्य के स्वरूप का निश्चय कर लेते हैं और सत्य को न देखकर उसे ही देखते हैं जिसे हम सत्य के रूप में देखना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, हम प्रकृति के प्रत्येक कार्य में किसी न किसी उद्देश्य की झलक देखना चाहते हैं। हम प्रकृति को मानव स्वरूप दे देते हैं। हम अपने विचार और भावनाएं प्रकृति पर लाद देते हैं। जो हमें अच्छा लगता है उसी को देखना चाहते हैं और अन्य की ओर आँख मूंद लेते हैं। बिना आगमन तर्क का सहारा लिए केवल इंद्रिय अनुभव को ही सच मान लेते हैं। जैसे पृथ्वी को चपटी और स्थिर समझने लगते हैं आदि। द्वितीय है गुहा के अर्थात व्यक्तिगत अंधविश्वास या आइडोला स्पेकस, जो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषता है। जातीय अंधविश्वास मनुष्य जात मात्र में सामान्यतया विद्यमान होते हैं, किंतु गुहा के अंधविश्वास प्रत्येक व्यक्ति के अपने होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक संकुचित क्षेत्र का निर्माण कर लेता है, अपनी एक सीमा बना लेता है, अपनी इस काल्पनिक गुफा या कंदरा में ही रहना चाहता है, जिसमें प्रकृति का प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता। इन व्यक्तिगत पक्षपातों, सनकों, अंधविश्वासों को जो संस्कार, शिक्षा और वातावरण के कारण पनपते हैं, बेकन ने गुहा के अंधविश्वासों का नाम दिया है। प्लेटो के प्रजातंत्र या रिपब्लिक में वर्णित गुहा की कथा या पैराबल ऑफ द केव की दृष्टि में रखकर ही शायद बेकन ने यह नामकरण किया है। तृतीय बाजारू अर्थात भाषा के अंधविश्वास या आइडोलाफोरी, ये भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के अंधविश्वास हैं। ये भयंकर हैं, दार्शनिक मन मतांतरों के पारस्परिक कलह के मूल में प्रायः ये ही अंधविश्वास होते हैं। एक मत कुछ शब्दों को किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त करता है, किंतु विरोधी मत उस विशेष अर्थ को न जानकर या न मानकर उन शब्दों को उनके प्रचलित अर्थ में या अन्य किसी अर्थ में समझता है, और दोनों मतों में व्यर्थ का संघर्ष होने लगता है। शब्दार्थ की परंपरा भाषा में रूढ़ हो जाती है। शब्दों के प्रचलित अर्थ होते हैं और उनसे लोक व्यवहार चलता है। यह शब्दों और अर्थों के लेन देन की बाजारू अर्थात व्यवहारिक परंपरा है। पृष्ठ संख्या 85। विज्ञान या दर्शन बहुधा शब्दों की इस बाजारू परंपरा से असंतुष्ट होकर उन शब्दों का प्रयोग अपने विशिष्ट या पारिभाषिक अर्थ में करता है। अतः विज्ञान या दर्शन के किसी मत को समझने के लिए उसमें प्रयुक्त शब्दों के पारिभाषिक अर्थों को जान लेना आवश्यक है। सत्य की अभिव्यक्ति के लिए मानव के पास भाषा ही एकमात्र साधन है, और भाषा के शब्द प्रायः अनुभूत सत्य की ठीक ठीक अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। बहुत से शब्दों का तो यथार्थ से कोई संबंध ही नहीं होता। बहुत से शब्द अर्थ को अपूर्ण या भ्रांत ढंग से व्यक्त करते हैं। बहुत से शब्दों का व्यर्थ ही प्रयोग किया जाता है। बहुत से शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं। ये सब भाषा के अंधविश्वास हैं। चतुर्थ है रंग मंच और भाषण मंच अर्थात आगमों के अंधविश्वास या आइडोला थिएटरी। ये आगम के, शास्त्र के, धर्म और दर्शन के, संप्रदायों के, शब्द प्रमाण के अंधविश्वास हैं। इनके कारण हम बहुत सी बातों को बिना प्रकृति निरीक्षण किए, बिना आगमन तर्क की कसौटी पर कसे, केवल इसलिए सत्य मान लेते हैं कि अमुक आगामों में, अमुक शास्त्रों में या अमुक संप्रदायों में उनकी मान्यता है। बेकन इनको रंगमंच के अंधविश्वास कहते हैं, क्योंकि यह सब नाटक है, यथार्थ नहीं। जैसे नाटक का संसार कल्पित होता है, यथार्थ नहीं, नाटक में कल्पित पात्र रंगमंच पर अपने स्वाभाविक रूप में न आकर नाटक के चरित्रों के रूप में आकर उनकी भूमिका का चित्रण करते हैं, वैसे ही आगामों और संप्रदायों में वर्णित बहुत से तत्व कल्पना मात्र हैं, यथार्थ से बहुत दूर। इन कोरी कल्पनाओं को अपने इंद्रिय अनुभव और तर्क को ताक में रखकर केवल आगामों के आधार पर ही सत्य मान लेना अंधविश्वास है। दर्शन को इन चारों प्रकार के अंधविश्वासों से बचना चाहिए। दर्शन के लिए केवल इंद्रिय अनुभव या प्रत्यक्ष ही पर्याप्त नहीं है, आगमनात्मक तर्क भी अत्यावश्यक है। पहले प्रकृति की घटनाओं का इंद्रियों से निरीक्षण करना चाहिए। इंद्रियां सदा ही और प्रत्येक वस्तु को ठीक रूप में देखती हैं, इनसे धोखा भी हो जाता है, अतः इस धोखे से बचना चाहिए। इंद्रियों को सबल बनाने के लिए यंत्र आदि की सहायता लेनी चाहिए। यह हुआ इंद्रिय अनुभव द्वारा घटनाओं का और तथ्यों का संग्रह, जिसमें भावात्मक और अभावात्मक दोनों प्रकार के तथ्य और घटनाएं आ जाती हैं। तत्पश्चात इन तथ्यों और घटनाओं का विश्लेषण करना चाहिए। इस विश्लेषण में उनकी परस्पर तुलना और विरोध का प्रदर्शन होना चाहिए। इसके द्वारा सामान्य नियम या हेतु की खोज करनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 86। हेतु निर्भर होता है व्याप्ति पर, अतः धैर्य पूर्वक सावधानी के साथ अन्वय और व्यतिरेक द्वारा हेत्वाभासों का निराकरण करते हुए व्याप्ति का ज्ञान करना चाहिए। यह आगमन तर्क की पद्धति है। एरिस्टॉटल का निगमन तर्क व्यर्थ का शब्द जाल है। सत्य की अभिव्यक्ति आगमन तर्क से ही होती है। इसके लिए प्रयोग पद्धति को अपनाना चाहिए। यह आगमन तर्क व्याप्ति पर निर्भर है। यह केवल गणनात्मक आगमन नहीं है। केवल तथ्यों और घटनाओं को गिनने से ही काम नहीं चलता, उनमें आधारभूत व्याप्ति को खोजना आवश्यक है। जो व्यक्ति प्रत्यक्ष द्वारा केवल तथ्यों और घटनाओं का संग्रह मात्र करते हैं, वे चींटियों के समान हैं जो केवल सामान इकट्ठा करती है। जो व्यक्ति प्रत्यक्ष का महत्व भूलकर तथ्यों और घटनाओं को ठुकरा देते हैं और कोरी कल्पनाओं के ही जाल बुनते रहते हैं, वे बुद्धिवादी मकड़ी के समान हैं जो अपने ही अंदर से तंतु निकालकर जाला बुनती रहती है। दार्शनिक को मधुमक्खियों के समान होना चाहिए। जैसे मधुमक्खियां विविध फूलों से रस एकत्रित करती हैं और फिर उस रस को मधु में परिणत करती हैं, वैसे ही दार्शनिक को प्रत्यक्ष के द्वारा तथ्यों और घटनाओं का संग्रह करना चाहिए और फिर उनके विश्लेषण द्वारा उनमें अंतर्निहित और उनके आधारभूत मौलिक नियम को उपस्थित करना चाहिए। दार्शनिक में प्रत्यक्षवाद और बुद्धिवाद का समन्वय होना चाहिए। यह ध्यान देने की बात है कि बेकन का यह महत्वपूर्ण आलंकारिक कथन कांट के प्रसिद्ध सिद्धांत का पूर्व रूप है। कांट ने प्रत्यक्षवाद और बुद्धिवाद के लंबे संघर्ष को मिटाकर उन दोनों में संधि करवा दी है। कांट के अनुसार ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष और बुद्धि दोनों आवश्यक है। प्रत्यक्ष ज्ञान का उत्पादन और बुद्धि ज्ञान का निमित्त कारण है। प्रत्यक्ष के इंद्रिय संवेदन ज्ञान के अवयव हैं और बुद्धि के विकल्प ज्ञान को रूप देते हैं। दोनों अपृथक सिद्ध हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। बेकन ने मानव की तीन शक्तियां मानी है, स्मृति, कल्पना और ज्ञान। स्मृति से इतिहास की, कल्पना से काव्य की और ज्ञान से दर्शन की सृष्टि होती है। ज्ञान ही असली शक्ति है, इसीलिए दर्शन का महत्व है। बेकन ने प्रतिज्ञाएं और संकल्प तो बड़े बड़े किए हैं, किंतु वे स्वयं उनको पूर्ण नहीं कर सके। उनका दृष्टिकोण विशाल नहीं था। वे स्वयं वैज्ञानिक न होते हुए भी दर्शन को विज्ञान का दास बनाने के लिए उत्सुक थे। कॉपरनिकस जैसे वैज्ञानिक के खोजों की बेकन उपेक्षा करते रहे। केपलर और गैलीलियो जैसे विद्वान वैज्ञानिकों की भी बेकन ने उपेक्षा की। पृष्ठ संख्या 87। एरिस्टॉटल के निगमन तर्क के प्रति बेकन ने जो विश्वमन किया है, उससे यही सिद्ध होता है कि निगमन तर्क का बेकन को पूर्ण ज्ञान नहीं था। वस्तुतः निगमन और आगमन एक ही तर्क के दो रूप हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। बेकन की व्याप्ति में निगमन स्वयं प्रतिष्ठित हो जाता है। बेकन की प्रसिद्धि दर्शन क्षेत्र में केवल उनकी आगमन पद्धति के कारण है, किंतु यह पद्धति एकांगी और बिना निगमनात्मक समन्वय के अधूरी और भ्रामक है। और फिर इस पद्धति के आविष्कार का सारा श्रेय भी बेकन को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बेकन के देश में ही उन्हीं के समसामयिक वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट बेकन की रचना के प्रकाशन से पूर्व ही अपने अन्वेषणों में आगमन प्रणाली का प्रयोग कर रहे थे। बेकन का महत्व इतना ही है कि उन्होंने अपने समय में दर्शन क्षेत्र में विज्ञान प्रयोग और आगमन तर्क पद्धति का प्रबल समर्थन किया। अगले दार्शनिक हैं थॉमस हॉब्स, 1588 से 1679 ईस्वी। हॉब्स ऑक्सफोर्ड के स्नातक थे। अर्ल केवेंडिश के शिक्षक के रूप में उनके निजी पुस्तकालय में उन्हें पढ़ने की बड़ी सुविधा मिली। यूनानी साहित्य और दर्शन, गणित और विज्ञान, राजनीति और नीति शास्त्र का उन्होंने अच्छा अध्ययन किया। राजनीतिक दर्शन पर उनका ग्रंथ लेवियाथन काफी प्रसिद्ध है। हॉब्स स्वतंत्र विचारों के किंतु भीरु प्रकृति के पुरुष थे। बेकन के समान हॉब्स भी दर्शन को धर्म से पृथक मानकर चलते हैं। धर्म श्रद्धा पर निर्भर है, दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान पर। सत्य इंद्रिय अनुभव पर आधारित है, जो इंद्रिय गोचर नहीं, वह काल्पनिक है। किंतु बेकन ने जहां केवल आगमन प्रणाली को ही मान्यता दी, हॉब्स ने आगमन और निगमन दोनों को मान्य ठहराया है। दूसरे हॉब्स के अनुसार ज्ञान भी जड़ है, वह मस्तिष्क या स्नायु जाल का क्रिया मात्र है। तीसरे हॉब्स के अनुसार दर्शन, राजनीति, आचार शास्त्र, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान आदि सब क्षेत्रों में यांत्रिकवाद का अखंड साम्राज्य है। हॉब्स प्रत्यक्षवाद और जड़वाद के एक विशिष्ट प्रतिनिधि हैं। हॉब्स के अनुसार दर्शन का अर्थ है अभ्रांत प्रति जो इंद्रिय संवेदन पर निर्भर है, अतः जो इंद्रिय गोचर है वही सत्य है। तर्क का कार्य इंद्रिय संवेदनों का विभाजन या समन्वय करना है। दर्शन कार्य से कारण का और कारण से कार्य का ज्ञान कराता है। इसकी पद्धति आगमन और निगमन दोनों प्रकार के तर्क की है। इंद्रिय संवेदन और उनके जनक बाह्य पदार्थ, ये दो वस्तुएं ही सत्य हैं। ये सब पृथक पृथक विशेष हैं। सामान्य कोरी कल्पना है, सामान्य नाम मात्र है। पृष्ठ संख्या 88। इसका प्रयोग व्यवहार की सुविधा के लिए किया जाता है। व्यक्ति ही सत्य है, पृथक पृथक विशेष मनुष्य सत्य है। मनुष्य का सामान्य मनुष्यत्व केवल नाम है। यह मत हॉब्स का नामवाद या नॉमिनलिज्म कहलाता है। हॉब्स के अनुसार ज्ञान इंद्रिय अनुभव रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से उत्पन्न होता है, क्योंकि इंद्रिय संवेदन गतिशील बाह्य पदार्थों के कारण मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन हैं। वास्तव में बाह्य पदार्थों का स्वरूप क्या है यह हम नहीं जानते। जड़ ही एकमात्र तत्व है। ईश्वर आत्मा आदि अमूर्त चेतन पदार्थ कल्पना मात्र है। ईश्वर और आत्मा की तर्क द्वारा कल्पना की जा सकती है, किंतु वह क्या है यह हम नहीं जान सकते। प्रकृति ने मनुष्य को सब वस्तुएं दी हैं, अतः जिसका चाहे उसका उपभोग करना मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है। प्रारंभ में मनुष्य के लिए भेड़िया था। मानव जीवन क्षुद्र पशु तुल्य और अल्प था। प्रत्येक व्यक्ति अपना ही अधिकार चाहता था, अतएव जीवन युद्धमय था। न्याय अन्याय उचित अनुचित का कोई प्रश्न नहीं था। राज्य के विकास के साथ जब मनुष्य सभ्य हुआ तब युद्ध बंद होकर शांति स्थापित होने लगी। मनुष्य के जीवन और संपत्ति की रक्षा का भार राज्य ने ले लिया और इसके बदले में मनुष्यों ने शासित होकर राज्य की अधीनता स्वीकार की। मनुष्य युद्ध आदि के दुष्परिणामों के भय से, जीवन और संपत्ति की अरक्षा के भय से राज्य तंत्र स्थापित करने को बाध्य हुआ। बुद्ध के विकास के कारण नहीं, यह हॉब्स का सामाजिक समझौता नामक सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। स्पष्ट है कि हॉब्स जड़वाद या मटेरियलिज्म, इंद्रिय संवेदनवाद सेंसेशनिज्म, प्रत्यक्षवाद इम्प्रिसिज्म और यांत्रिकवाद मैकेनिकल डिटर्मिनिज्म के पोषक हैं। दर्शन के लिए उनकी कोई विशेष देन नहीं है। षष्ठ अध्याय समाप्त।